हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंध अध्याय 7 श्लोक संख्या 36, 37 एंड 38। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम् विदुरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशये नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरोऽस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होणा द्रपुलिंद पुलकशा आबीर शुंभा यवनाख सादया येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत्किलास्यत समीरिषीणां ऋषभप्रसीदता भूतैर्महद्भिर् य इमां पुरो विभु निर्माय शीति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ति गुणांशो दशषोर्हशात्मक सोलङ्कृष्टो भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै जगद्भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखं गुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं केशं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृन्द। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 36। ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के अलग अलग अवतारों के विषय में बताते हुए आज भगवान के उस अवतार के विषय में बता रहे हैं जिन्होंने सारे वेदों को संकलन करके उन वेदों को विभाजित किया और उन वेदों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के कारण उसका नाम वेद व्यास जी पड़ा। उनके विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं, काले न मिलित दिया काले न मिलित दिया विमर्शनेराम स्तोकायुषम सनिगमो बत दूर पार आविर्हितस्त्वनुयुगम सहि सत्यवत्याम वेदद्रुमम विटपशो विभजिष्यति स्म काले न मीलितदियाम विमर्शनेणाम स्तोकायुषम स्वनिगमो बत दूरपार आविर्हितस्त्वनुयुगम सहि सत्यवत्याम वेदद्रुमम विटपशो विभजिष्यति स्म काले न मीलितदियाम विमृश्यनेणाम स्तोकायुषम स्वनिगमो बत दूरपार आविर्हितस्त्वनुयुगम सहि सत्यवत्याम वेदद्रुमम विटपशो विभजिष्यति स्म। शब्दार्थ कालेन मीलित, कालेन अर्थात समय के साथ, मीलित दियाम अर्थात कम बुद्धिमान मनुष्यों का, अविमृश्य यानी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, नृणाम यानी मनुष्यों की, स्तोक आयुष्याम स्वनिगमो बत दूर पारा, स्तोक आयुष्याम अर्थात अल्पजीवी लोगों का, स्तोक आयुष्या मतलब जिनकी थोड़ी आयु है, स्वनिगम अपने द्वारा संकलित वेद साहित्य, निगम कहते हैं वेदों को, बत यानी ठीक ठीक, दूर पारा अर्थात अत्यंत कठिन, आविर्हितस्तनुयुगम आविर्हित यानी उसके रूप में प्रकट होकर तू, लेकिन अनुयुगम युग के अनुसार, स वे भगवान ही यानी निश्चित ही, सत्यवत्याम यानी सत्यवती के गर्भ से, वेद द्रुमम वेद रूपी कल्प वृक्ष, विटपश अर्थात शाखाओं में के विभाजन द्वारा, विभिजष्यति यानी बांटे का स्म अर्थात मानो। अनुवाद, सत्यवती के पुत्र व्यासदेव के रूप में अवतरित होकर स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देगा। ब्रह्मा जी भगवान के विभिन्न अवतारों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया कि द्वापर में जैसे भगवान श्री कृष्ण आएंगे और वो अपनी कौन कौन सी लीलाएं करेंगे, किस तरह से असुरों का वध करेंगे, पुतना का उद्धार करेंगे, रास नृत्य करेंगे, किस तरह काले, ये सब बताने के बाद बताएंगे कि उस समय जब भगवान का अवतार होगा एक दूसरा भी अवतार होगा जो कि सत्यवती के गर्भ से होगा और उनका काम क्या होगा। क्योंकि द्वापर युग के बाद कलयुग स्टार्ट होने वाला है और कलयुग के जीव जो हैं उनकी अंदर दो खामियां हैं, एक तो उनका जीवन कम है, अल्पजीवी है, और दूसरा उनके अंदर ज्ञान कम है, अल्पज्ञ है। तो वेद जो एक पहले वेद था, अब एक वेद इतना विशाल था जिसको पढ़ने के लिए ये दोनों चीजों की जरूरत होती है, ज्यादा समय
और ज्यादा बुद्धि, लेकिन उनको ये सब नहीं है, उनके पास तो समझ में आएगा नहीं। तो उन्होंने वेद व्यास जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया और सारे वेदों को छोटे छोटे पीसेस में, जैसे चार वेद, एक वेद से चार वेद बनाए, चार वेदों को समझने के लिए उपनिषद और पुराण इत्यादि ये सब बना, ताकि हम जैसे जो बिल्कुल बुद्धिहीन और अल्पायु जीव हैं, वो इन जो चीज समझ सकते हैं उसको सरलता से बताए, ताकि इसको समझकर वो अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ सकें और अपने जीवन को सफल कर सकें। क्योंकि अगर उनके पास कोई ऐसा साहित्य नहीं होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ काम वासना में ही अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा ने कलयुग के अल्पजीवी मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवतम के भावी संकलन का उल्लेख किया है। जैसा कि प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है कि कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्य अल्पजीवी होंगे और साथ ही ईश्वर विहीन मानव समाज होने के कारण जीवन की अनेक समस्याओं से उद्विग्न होंगे। भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर की भौतिक सुविधाओं में उन्नति का होना तमोगुण का सूचक है। ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ है आत्म साक्षात्कार के ज्ञान का विकास। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जैसे पहले चैप्टर सिकर में बताया गया कि कलयुग के जो जीव होंगे उनके अंदर बहुत सारी खामियां होंगी। प्रायणाल्पायुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगे सना मंदासु मंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रिता। अल्पायु होगी, बुद्धिमंद होगी, काहिल होंगे और भगवान की राह में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होगी और दूसरा उनको साधु संग प्राप्त नहीं होगा और होगा भी तो भी उपद्रिता, हमेशा बेचैन रहेंगे। तो इसके कारण उनको इतना ही जो दिव्य ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो समझ में नहीं आएगा। और दूसरा यहाँ पर एक बात श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि अगर शरीर की भौतिक सुविधाओं की उन्नति हो रही है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि जीव के ज्ञान का विकास हो रहा है। शरीर की भौतिक सुविधाएं, मतलब आज हम लोगों ने अपने आप अपने जीवन को कितना लग्जरियस बना दिया है ना, हमें एक घर में रहने के लिए कितनी सारी फैसिलिटीज चाहिए, गर्मी हो रही है एसी चाहिए, इस तरह का ना घर चाहिए, खाने के लिए हर चीज जो है वो, पहले क्या होता था माता जी जो होती थी वो अनाज को पीसती थी और पीस के आटा बनाती थी, आज तो आटा भी मशीन से गूंदा जाता है, सारे मसाले, मतलब अपने शरीर भौतिक शरीर को बहुत ज्यादा आसान इजी कर दिया गया है और उन जो ये सुविधाएं हैं उनको बहुत बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे शरीर की भौतिक सुविधाओं में उन्नति का होना तमोगुण का सूचक है, यानी कि जीव जितना जितना आलसी होता जाएगा तभी तो ये सब सहूलतों की इच्छा होती है उसको। और ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ क्या है, आत्म साक्षात्कार के ज्ञान का विकास, कि मैं अपने सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं कौन हूँ, अगर मैं आत्मा हूँ तो मुझे आत्मा की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए। यदि जीव आत्म साक्षात्कार की ओर पे आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब है ज्ञान की उन्नति हो रही है, वरना अगर केवल भौतिक सहूलतें ही उनको ही बढ़ा रहा है तो इसका मतलब है वो आलस्य कर रहा है या तमोगुण उसका बढ़ रहा है। ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ है आत्म साक्षात्कार के ज्ञान का विकास, किंतु कलयुग के अल्पज्ञानी पुरुष ब्रह्मवश 100 वर्ष की लघु जीवन अवधि को ही, जो अब घटकर 40 या 60 वर्ष हो चुकी है, सब कुछ मान बैठते हैं और अल्पज्ञानी हैं, क्योंकि उन्हें जीवन की शाश्वतता का ज्ञान नहीं है। वे 40 वर्षों तक रहने वाले क्षणिक भौतिक शरीर को जीवन का मूल तत्व मान लेते हैं। ऐसे मनुष्य गधों और बैलों की तुल्य हैं, किंतु भगवान समस्त जीवों को दयालु पिता की भांति श्रीमद् भगवत गीता जैसे संक्षिप्त ग्रंथों के रूप में और स्नातकों के लिए श्रीमद् भागवतम के रूप में विपुल वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्राकृतिक गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए वेद व्यास जी ने पुराणों तथा महाभारत की रचना की, किंतु इनमें से कोई भी ग्रंथ वैदिक सिद्धांतों से पृथक नहीं है। श्रील प्रभुपाद की है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने एक और बहुत ही सुंदर बात बताई कि बाकी युगों में जीव के पास बहुत आयु होती थी, लेकिन हमारी जो आयु है वो तो बिल्कुल ही थोड़ी है, 100 वर्ष की आयु है। और उन 100 वर्षों में भी हमको प्राप्त कितना होता है, जीने के लिए देखा जाए तो 40-50 साल ही कोई जी रहा है, और उसके आगे अगर जी रहा है तो जी नहीं रहा है, बस जी दिन काट रहा है, वो जीवन नहीं होता। तो इतनी थोड़ी सी आयु के लिए सब कुछ जो शाश्वत जीवन है उसको दांव पे लगा देते हैं, भगवान की आदेशों का पालन नहीं करते हैं, भगवान के प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, केवल बस इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य। और वो समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं जो हम ऐसा कर रहे होते हैं। तो वास्तव में भगवान तो सबके ऊपर कृपालु हैं। भगवान ने कहा ठीक है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकते तो छोटे ग्रंथ जैसे श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ 700 श्लोक में जीवन की सारी जो समस्याएं हैं, जो उलझने हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको श्रीमद् भगवत गीता के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने सुलझा दिया। और श्रीमद् भागवतम में भगवान के प्रति प्रेम और आकर्षण प्रदान करने की सारी जो योजना है वो भगवान ने दे दी, ताकि जीव जो है वो केवल काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना जिए, बल्कि अपने जीवन को भगवान की शरणों में लेकर जाने के लिए, भगवान के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए जिए। क्योंकि जब तक जीव के हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है ना, तब तक वो संतुष्ट नहीं रह सकता। संसार के लिए प्रेम भर के बैठे हैं और भगवान के लिए प्रेम नहीं है, और वो संसार का जो प्रेम है वो हमेशा हमें कष्ट देता है, दुख देता है, रुलाता है, लेकिन जो भगवान का प्रेम है वो उसी दिन से आनंद प्रदान करता है जिस दिन से हृदय में आता है। भगवान से भले मिलन न हो, लेकिन वो मिलन की जो तड़प है ना, उसमें जो आनंद है वो भी संसार की सारी वस्तुओं और लग्जरियस लाइफ और प्रेम को प्राप्त करने से भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जीवन जो है वो आत्म साक्षात्कार करने के लिए मिला है, ताकि जीव जो है वो अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ सके।
देव दिशं निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिता विरदिश्य दूर्भिः लोकान् ज्ञातां मतिविमोहमति प्रलोभम् विषं विदाय बहुभाष्यति औपधर्म्यम् देव द्विषं निगमवर्त्मनि निश्चितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदश्यतुर्भिः लोकान् ज्ञातां मतिविमोहमतिप्रलोभम् वेषं विदाय बहुभाष्यति वोपधर्म्यम्।
यानी जब नास्तिक लोग वैदिक ज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञान मई के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेप शास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार करेंगे, तो भगवान बुद्ध रूप में अत्यंत ही आकर्षक वेश धारण करके उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्म की का आदेश देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान बुद्ध का यह अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी बुद्ध एक नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित बुद्ध अवतार एक अन्य कलयुग में हुआ था। एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग होते हैं और इनमें से एक में यहाँ पर वर्णित बुद्ध अवतार लेंगे। भगवान बुद्ध का अवतार तब होगा जब लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हो जाते हैं और तब वे सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाले धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसी अहिंसा स्वयं में धर्म न होकर धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण न होकर धार्मिक लोगों का महत्व गुण होती है महत्वपूर्ण गुण होती है। यह एक सामान्य बुद्धि का धर्म है क्योंकि इसमें मनुष्य को उपदेश दिया जाता है कि वह किसी पशु या जीवित प्राणी को हानि ना पहुंचाए क्योंकि उसके हानिकारक कर्मकर्ता को भी हानि पहुंचाने वाले होते हैं। किंतु अहिंसा के इन सिद्धांतों को सीखने के पूर्व उसे दो अन्य नियम भी सीखने पड़ते हैं। ये हैं विनम्र बनना तथा निराभिमानी होना। विनम्र तथा निराभिमानी बने बिना मनुष्य निरपराध तथा अहिंसक नहीं बन सकता। अहिंसक बनने के बाद मनुष्य को सहिष्णुता तथा सादगी सीखनी पड़ती है। मनुष्य को महान धर्मोपदेशकों तथा आध्यात्मिक नेताओं का सम्मान करना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखने, घर तथा परिवार में प्रति विरक्त परिवार के प्रति विरक्त रहने और भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। अंततः उसे भगवान को स्वीकार करके उनका भक्त बनना होता है, अन्यथा यह धर्म नहीं कहलाता। धार्मिक सिद्धांतों के केंद्र में भगवान का होना अनिवार्य है, अन्यथा सामान्य नैतिक उपदेश मात्र उपधर्म होता है जो धर्म के ही निकट होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि जिस तरह ब्रह्मा जी की पूरे एक दिन में 14 मनु होते हैं और हर एक मनु की जो आयु है उसके अंदर उसके पास 71 चतुर्युगी होते हैं, तो उस हर मनु की आयु में कम से कम 71 बार तो है ना कलयुग आता है, तो उसके अंदर अलग अलग थोड़े बहुत अवतारों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कैसा बुद्ध आएगा जब दक्ष बनकर महान विज्ञानी मय के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ परक्षव शास्त्रों से बढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार करेंगे। तो ये कोई ईश्वर प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई दूसरे युग के बुद्ध की बात हो रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर सभ्यता के विषय में बता रहे हैं कि जब लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हो जाते हैं तब वे सामान्य बुद्धि से समझने में आने वाले धर्म का उपदेश देते हैं। एकदम सामान्य साधारण लोग जो है ना वो साधारण तरीके का उपदेश देते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कुछ कुछ उपदेश इतने सुंदर होते हैं लेकिन उसके अंदर भगवान का कोई भी लेश मात्र नहीं होता है। आपको अच्छा बनना चाहिए, आपको विनम्र बनना चाहिए, आपको सबके साथ अच्छा, ये अच्छा है बहुत, लेकिन क्योंकि उसके अंदर से भगवान निकाल दिया गया तो फिर ये भक्तिमय उपदेश नहीं होगा। तो केंद्र क्यों, केंद्र में क्योंकि भगवान नहीं है तो फिर अन्यथा सामान्य नैतिक उपदेश मात्र उपधर्म होते हैं, जो धर्म के वो बस उपधर्म होते हैं। धर्म का मतलब होता है जिसका केंद्र भगवान हो। हम सुनते हैं बहुत सारे सुंदर आदेश होते हैं लेकिन उसमें भगवान का प्रेम नहीं बताया जाता है तो वो कैसे होता है, जीव बहुत भौतिकतावादी हो जाता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि ऐसी अहिंसा स्वयं में धर्म न होकर धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण होता है। ये धर्म नहीं है, है ना। धर्म तो क्या है, भगवान से प्रेम करना, बस। धर्म एक ही है जीवात्मा का सवय पुंसा परो धर्मो यतुर भक्ति अधोक्षरे। भक्ति मीन्स वोट प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम के साथ भगवान की सेवा करना, ये भक्ति है। लेकिन वो वास्तव में धर्म नहीं होता, लेकिन धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण होता है। और गुण क्या होता है? ये एक सामान्य बुद्ध का धर्म होता है। और क्योंकि इसमें मनुष्य के उपदेश, मनुष्य को ये उपदेश दिया जाता है कि वह किसी पशु या जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाए, बस कि किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए और इन्हें सबके साथ अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि उसके हानिकारक कर्मकर्ता को भी हानि पहुंचने वाली होता है। अगर आप किसी को बुरा करोगे तो कार्मिक अकाउंट ऐसे बन जाएगा कि वो भी आपके साथ बुरा करेंगे। किंतु अहिंसा के इन सिद्धांतों को सीखने से पूर्व उसे दो अन्य नियम को भी सीखना पड़ता है। दो अन्य कौन से नियम है? दो बहुत ही सुंदर नियम है जो कि धर्म ना होकर धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण है। और वो क्या है? विनम्र बनना। कोई भले कितना ही भगवान का भक्त हो, लेकिन यदि विनम्रता नहीं है ना, तो वो भक्त कहलाएगा नहीं। क्योंकि वो क्वालिटीज भी तो आनी चाहिए ना उसके अंदर, जो कि एक भक्त के अंदर होती है। क्यों? और चैतन्य महाप्रभु ने तो ये कह दिया कि भले आपको भक्ति के सारे गुणों के विषय में पता भी हो, लेकिन यदि आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो आप सतत हरि का कीर्तन कर ही नहीं सकते। एक तो विनम्रता होना चाहिए और दूसरा निर्अभिमानी होना चाहिए। अभिमान, दूसरों को मान देने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए मान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि ये दो क्वालिटीज किसी के अंदर है और उसके साथ वो भगवान की भक्ति कर रहा है ना, तो समझो कि वो भक्त है। अगर वो केवल नाम जप कर रहा है या फिर कोई अभ्यास कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ना विनम्रता है और ना ही निर्अभिमानता है, तो समझो अभी तक वो भक्ति के रस को समझा ही नहीं है। जब आप भक्ति करते हो तो उसके साथ साथ आपके अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए। भले ही शास्त्र में कह दिया यस्यास्ति भक्ते भगवत्य किंचना सर्वे गुणे तस्त्र सामासत, जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसके अंदर देवताओं जैसे सारे गुण आ जाएंगे, लेकिन यदि वो भगवान की भक्ति कर रहा है और उसके अंदर गुण नहीं आ रहे, इट मीन्स वॉट कि वो अभी तक भक्ति नहीं कर पाया है जिसको भक्ति कह रहे हैं। जिस तरह से शुद्धता से नाम जप करने के बाद हृदय पवित्र होना चाहिए, दूसरों के अंदर जो द्वेष है, जो दूसरों से ईर्ष्या है, वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन यदि नहीं हो रही है, इट मीन्स हमारी साधना में कुछ गड़बड़ है ना। हमारी साधना यदि प्योर है तो हृदय भी प्योर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए, निर्अभिमानता आनी चाहिए। मनुष्य निरपराध तथा अहिंसक तभी बन सकता है जब वो भगवान का भक्त बने। लेकिन यदि भक्त बनने के बाद भी उसके अंदर अभी तक अहंकार है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो फिर समझना चाहिए कि शायद वो भक्ति तो कर रहा है, लेकिन उसकी भक्ति जो है वो ऐसे ना, जैसे बीज डाला, उसको पानी भी दिया, उसको सींचा भी, लेकिन उसमें अंकुर नहीं फूटा, तो फिर वो बीज जो है वो गल रहा होता है अंदर ही अंदर, है ना, डिस्ट्रॉय। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है जिससे हम इतनी तपस्या, इतना अभ्यास कर रहे हैं, और कोई पागल हाथी आकर हमारे छोटे छोटे भक्ति के जो पौधे हैं उनको उखाड़ रहा है। ये कैसे पता चलेगा? जब हमारे अंदर हम देखेंगे कितनी विनम्रता है और कितना अभिमानता है। जैसे जैसे हमारे अंदर अहंकार होगा और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो इच्छा होगी, तब समझ लेना चाहिए कि इसके भक्ति के, हमारे जो भक्ति के पौधे हैं वो किसी ने कुचल दिए हैं। मतलब भक्ति का, भक्त का एक गुण होना चाहिए, वो तो हमारे अंदर आया ही नहीं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य को महान धर्म उपदेशकों तथा धार्मिक नेताओं का सम्मान करना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखने, घर तथा परिवार के प्रति विरक्त रहने और भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमको सबका सम्मान करना चाहिए, सहिष्णुता और सादगी सीखनी चाहिए। भक्त बने हैं तो भक्ति की क्वालिटीज भी डेवलप करनी चाहिए। घर और परिवार के प्रति विरक्त रहने और भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। अंततः उसे भगवान को स्वीकार करके उनका भक्त बनना चाहिए। क्वालिटीज धीरे धीरे डेवलप करनी चाहिए, हमको देखना चाहिए, अपने ऊपर नजर होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारी दूसरों के ऊपर नजर होती है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसने क्यों ऐसा किया, वो क्यों दूसरों के साथ इस तरह, उसने उस, हमें अपने ऊपर देखना चाहिए। अपने आप को, खुद को बदलो और जो है ना, दूसरों को बदलने की कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं। दूसरे को यदि आप पॉइंट आउट करते करते उनके अवगुण को देखोगे ना, तो वो अवगुण आपके अंदर डेवलप होंगे। इसकी कोशिश सदैव यही करनी चाहिए कि हम अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करें जिनको भगवान पसंद करते हैं। या भगवान ने तो भगवत गीता में खोल के बता दिया कि कौन से भक्त मुझे अच्छे लगते हैं, किन भक्तों से मैं प्यार करता हूँ। अद्वैष्ट सर्वभूतानां, जो किसी के साथ द्वेष नहीं करते। हम देखें, हम तो दूसरे लोगों को छोड़ दें, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको छोड़ दें, अपने ही भक्तों के साथ द्वेष होता है, अपनों के साथ, अपने घर वालों के साथ द्वेष होता है। क्या हम अपने आप को योग्य समझते हैं? कभी झांक कर देखें अपने आप के हृदय के अंदर, क्या हम इस योग्य हैं कि हम भगवान के भक्त कहलाएं? तो मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि हमको धीरे 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 इस योग्य बनना पड़ेगा और ऐसी क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। जब प्योरिटी आती है ना, जब किसी के प्रति हृदय के अंदर द्वेष नहीं होता है ना, जब जीव मात्र के अंदर भगवान दिखता है। ऐसा तो भगवान ने कह दिया कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनी चाहे व पंडिता समदर्शना। जिसके अंदर ज्ञान होता है उसके अंदर विद्या के साथ साथ विनय आना चाहिए। जैसे जैसे आपको गीता और भागवतम समझने आते ना, उसका पता कैसे चलेगा कि आप कैसे कितना ज्यादा विनम्र हो गए। और जैसे विनम्रता का क्या लक्षण है, केवल किसी को प्रणाम करके सह झुका देना, क्या यही विनम्रता है ना? हम सोचते हैं हर किसी को मिलते हम बोलते दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, केवल बोल देने से बस विनम्रता आ गई? नहीं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तनी, आपके सामने चाहे ब्राह्मण आता है, चाहे गाय आती है या हाथी आता है, कुत्ता या कुत्ते को खाने वाला चंडाल आता है, उसके अंदर सुनी चाहे वह शपा के पंडिता समदर्शना। समदर्शना का मतलब ये नहीं है कि वो सबको इक्वल, समदर्शना का मतलब है उन सबके अंदर आपको भगवान का एक प्रकाश दिखे, भगवान का एक स्वरूप दिखे। हम तो कितनी नफरत करते हैं उन व्यक्तियों के साथ जो देवताओं की पूजा करते हैं, शक्ल अच्छी नहीं लगती उनका, उनकी जो निराकार की पूजा करते हैं। अब वो किसी की भी करते हैं, हम लोगों को, अगर हम अपने आप को भक्त सोच रहे हैं कि हम भक्त हैं, तो सबका सम्मान करना चाहिए। अमानी न माना देना का मतलब ये थोड़े कि बस जो हमारे गुरु के लोग हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, उनको ही हमको सम्मान देना है या जिनसे सीखते हैं। अमानी न माना देना का मतलब है अपने लिए मान की कोई उपेक्षा ना करना और प्रत्येक जीव का सम्मान करना। तो हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं, और दूसरे लोग अगर देखा जाए तो क्यों नहीं हमसे प्रेम कर रहे हैं, है ना? कितने सारे लोग को तो हम अच्छे नहीं लगते, उसका कारण भी तो यही है कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है जो एक भक्त के अंदर होनी चाहिए। वरना एक भक्त जो होता है वो इतना प्योर होता है कि मनुष्य तो क्या पशु भी उससे प्रेम करने लगते हैं। तो यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि केवल नाम जप करना काफी नहीं है। भगवान ने कह दिया अभ्यास न कौनते हैं वैराग्य न च कुह्यते। अभ्यास के साथ साथ भौतिक वस्तुओं के आकर्षण से वैराग्य होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए और निर्म अहमता होनी चाहिए। तो हमको धीरे धीरे इन क्वालिटीज को डेवलप करना है ताकि हम भगवान को
गुरु महाराज को मुंह दिखाने के लायक बन सके कि भगवान हम वो क्वालिटीज डेवलप करने की कोशिश तो कर रहे थे जो आपको अच्छी लगती हैं, अब कितना सफल हुए वो तो आपको ही पता है। क्षमा कीजिएगा, टॉपिक पता नहीं कहाँ चला गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद के प्रसाद रहिएगा। मेरे लिए ये प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं।